नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
पल पल मसीह के प्यार में बीतेंगे उम्र भर, जब तक है सांस गाऊंगा गूंजेगी हर डगर। पल पल मसीह के प्यार में बीतेंगे उम्र भर, जब तक है सांस गाऊंगा गूंजेगी हर डगर। साथ ही होगी मसीह के साथ ही अब जिंदगी बसे। पल पल मसीह के प्यार में बीतेंगे उम्र भर, जब तक है सांस गाऊंगा हर डगर। इस हाल में रहूं नहीं भूलूं गमों, खुशियों में मुस्कुराऊना भागूं गमों से मैं। ईशु की रहनुमाई में, ईशु की रहनुमाई में चले दूं कहे जिधर। पल पल मसीह के प्यार में।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब कुशल से हैं और आज के बाइबल अध्ययन के लिए तैयार हैं। तो मित्रों, विलंब न करते हुए हम आज उत्पत्ति की पुस्तक के 44 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और हम देखते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों को घर भेजते हैं। तो आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 44 अध्याय और उसके 1-5 पदों को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। तब उसने यह कहकर अपने घर के अधिकारी को आदेश दिया, इन मनुष्यों के बोरों में जितना वे ले जा सकते हैं उतना अन्न भर दो, और प्रत्येक पुरुष का रुपया उसके मुंह पर रख दे, और मेरा चांदी का कटोरा अन्न के रुपयों के साथ सबसे छोटे के बोरे के मुंह पर रख दे। और जैसा यूसुफ ने कहा था उसने वैसा ही किया। भोर होते ही वे मनुष्य अपने गधों सहित विदा कर दिए गए। वे नगर से निकलकर दूर भी न जा पाए थे जब यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों का पीछा कर और जब तू उनके पास पहुंच जाए तो उनसे कहना, तुमने भलाई के बदले में बुराई क्यों की है? क्या यह वही वस्तु नहीं जिससे मेरा स्वामी पीता है और जिसे वास्तव में वह सुकून विचारने के लिए प्रयोग में लाता है? तुमने ऐसा करके बुरा किया है। मित्रों, हम देखते हैं कि यूसुफ उन्हें दूर भेजता है और सब भाई यह सोचने लग जाते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि विन्यामिन के बोरे में चांदी का कटोरा है, परंतु यूसुफ के घर का अधिकारी एक निश्चित निर्देश के साथ उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुंचता है। जब वे सब भाई थोड़ी दूर ही पहुंचते हैं कि वो उनके पास जाकर उनको पकड़ता है और एक बड़ी सेना या दल उनके पीछे आता है। उनके ऊपर दोष लगाता है कि उन्होंने यूसुफ के चांदी के कटोरे को ले लिया है जो यूसुफ का है। तब हम उत्पत्ति की पुस्तक 44 अध्याय उसके 6-7 पद में पढ़ते हैं, अतः उसने उन्हें जा पकड़ा और उनसे ये बातें कह दी। उन्होंने उससे कहा, हमारा स्वामी ऐसी बातें क्यों कहता है? ऐसा काम करना तेरे दासों से दूर रहे। मित्रों, इस बात पर ध्यान दें कि अधिकारी कहता है कि यूसुफ इस कटोरे को शकुन विचारने के काम में लाता है। इस बात को याद रखें कि यूसुफ एक भविष्यवक्ता था और वह भविष्य की बातों को बताने में सक्षम था। हम भी इसे जानते हैं क्योंकि उसने प्रधान रसोइये और प्रधान साकी के सपनों का व फिरौन के सपनों का अर्थ बतलाया था। हो सकता है कि उसने उस समय इस कटोरे का उपयोग किया हो, या हो सकता है कि यह भी उसके चाल का एक हिस्सा या भाग हो। मित्रों, हमें इस बात को समझना चाहिए कि उसके लिए भविष्यवाणी एक वरदान है जिसे परमेश्वर ने उसे दिया था, और यह सब कुछ किसी लिखित या प्रकाशन से पहले दिया गया था। हमें कटोरे के अंदर झांक कर उसमें चाय की पत्ती को देखना नहीं है, और न ही हमें उसमें शकुन देखना है जो बेकार की बात है या आज लोगों के दुखित आत्मिक स्थिति को प्रकट करता है जब वे इस प्रकार की बातों की तरफ मुड़ते हैं। यूसुफ के पास वरदान था, वो उस कटोरे में नहीं था। उसका यह वरदान परमेश्वर की ओर से था। मित्रों, हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 44 अध्याय के 8-9 पद में आगे पढ़ते हैं। देख, जो रुपया हमें अपने बोरों के मुंह पर मिला था उसे तो हम कनान देश से तेरे पास वापस ले आए। तब हम तेरे स्वामी के घर से चांदी या सोना क्यों कर चुरा सकते हैं? तेरे दासों में से जिस किसी के पास वह निकले वह मार डाला जाए और हम भी अपने स्वामी के दास हो जाएंगे। मित्रों, उन्हें पूरा भरोसा था कि उनमें से किसी ने कटोरा नहीं लिया है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि कटोरा विन्यामिन के बोरे में से मिलता है। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 44 अध्याय के 10-12 पदों में इस प्रकार से पढ़ते हैं, लिखा है, अतः उसने कहा, तुम्हारे कहने के अनुसार ही हो, जिसके पास वह निकले वह तो मेरा दास होगा और शेष तुम सब निरपराध ठहरोगे। तब उन्होंने फुर्ती की और अपने अपने बोरे भूमि पर उतार कर प्रत्येक ने अपना अपना बोरा खोल दिया। तब उसने बड़े से आरंभ करके सबसे छोटे के बोरे में खोज की और वह कटोरा विन्यामिन के बोरे में मिला। मित्रों, यह सच है कि यूसुफ ने अपने अधिकारी को विन्यामिन के बोरे में ही कटोरा डालने का निर्देश दिया था। अब हम आगे उत्पत्ति की पुस्तक 44 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ते हैं। तब उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़े और अपने अपने गधे को लाद कर नगर की ओर लौट पड़े। मित्रों, उनका अपने वस्त्र को फाड़ना एक बहुत अधिक शोक को दर्शाता है। वे सब नगर में वापस जाने के लिए मुड़ गए। वे बिन्यामिन के बिना घर नहीं जा सकते थे, और इसे आप सब भी जानते हैं। यहां पर फिर से वे यूसुफ के सामने भूमि पर गिरकर उसे दंडवत करते हैं। इस समय एक घोर व्याथा और घबराहट में किया गया दंडवत था। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 44 अध्याय उसके 14-15 पद में आगे पढ़ते हैं। जब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पहुंचे तो वह वहीं था, और वे उसके सामने भूमि पर गिरे। यूसुफ ने उनसे कहा, तुमने यह कैसा काम किया है? क्या तुम नहीं जानते कि मुझ जैसा मनुष्य शकुन विचार कर सकता है? हम देखते हैं कि यहूदा सामने आता है और इस व्यक्ति की श्रेष्ठता वास्तव में यहां पर दिखती है। मित्रों, इस बात को याद रखें कि हमारा उद्धारकर्ता इसी यहूदा जाति से आने वाला था। यह व्यक्ति एक बहुत ही सुंदर वक्तव्य देता है जो शायद कभी लिखा गया हो। वे इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि यह सब कुछ उनकी ही पापों के कारण उनके ऊपर आया है। हम उत्पत्ति 44 अध्याय उसके 16-17 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, अतः यहूदा ने कहा, हम अपने स्वामी के दास हैं, हम और वह भी जिसके पास कटोरा मिला। परंतु उसने कहा, ऐसा करना मुझसे दूर रहे, जिस जन के पास यह कटोरा मिला है वही मेरा दास होगा, परंतु जहां तक तुम्हारा प्रश्न है तुम शांति से अपने पिता के पास चले जाओ। यूसुफ यहां पर उनकी परीक्षा लेना चाहता है कि वे अपने भाई से प्यार करते हैं या नहीं। वह कहता है कि विन्यामिन ही वह अपराधी है, इसलिए विन्यामिन को ही यहां पर रुकना होगा। उन्होंने उसे दास होने के लिए बेच दिया था, अब वह कहता है कि विन्यामिन को यहां छोड़ दो ताकि वह मेरा दास ठहरे, क्योंकि वही अपराधी है और बाकी सब लोग अपने घर जा सकते हैं। अब यहूदा की सुनिए कि वह क्या कहता है। उत्पत्ति 44 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, तब यहूदा ने उसके पास जाकर कहा, हे मेरे स्वामी, तेरा दास अपने स्वामी के कान में एक बात कहने पाए और तेरा क्रोध तेरे दास पर न भड़के, क्योंकि तू तो फिरौन के तुल्य है। आप यहां पर देख सकते हैं कि यूसुफ मिस्र में किस ऊंचे पद पर है। हम इसके आगे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 44 अध्याय और उसके 19 से 29 पदों में इस प्रकार से पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, मेरे स्वामी ने अपने दासों से पूछा था, तुम्हारा पिता या तुम्हारा भाई है? और हमने अपने स्वामी से कहा था, हमारे पास बूढ़ा पिता है और उसके बुढ़ापे का एक छोटा बालक भी है, अब उसका भाई मर गया है, इसलिए वह अपनी माँ का अकेला ही रह गया है और उसका पिता उसे प्यार करता है। तब तूने अपने दासों से कहा था, उसको मेरे पास ले आओ कि मैं उसे देखूं, परंतु हमने अपने स्वामी से कहा था, वह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यदि वह अपने पिता को छोड़ देगा तो उसका पिता मर जाएगा। फिर भी तूने अपने दासों से कहा था, जब तक कि तुम्हारा सबसे छोटा भाई तुम्हारे साथ ना आए तब तक तुम मेरा मुंह दोबारा ना देखने पाओगे। तब ऐसा हुआ कि जब हम अपने पिता तेरे दास के पास गए तो हमने उससे अपने स्वामी की बातें कह सुनाई, और हमारे पिता ने कहा, पुनः जाकर कुछ और भोजन वस्तु मोल ले आओ, परंतु हमने कहा, हम नहीं जा सकते, यदि हमारा सबसे छोटा भाई हमारे साथ रहे तब तो हम जाएंगे, क्योंकि जब तक हमारा सबसे छोटा भाई हमारे साथ ना रहे तब तक हम उस पुरुष का मुंह तक ना देखने पाएंगे। और हमारे पिता तेरे दास ने हमसे कहा, तुम जानते हो कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए दो पुत्र उत्पन्न किए थे, एक तो मुझे छोड़ ही गया और मैंने सोचा कि निश्चय वह फाड़ डाला गया होगा, और तब से मैंने उसे फिर नहीं देखा, और यदि तुम इसे भी मेरी आंखों के सामने से ले जाओ और कोई विपत्ति इस पर आ पड़े तब तो तुम मुझ पके बाल वाले को शोक के साथ अधोलोक में उतारोगे। मित्रों, यहां पर यहूदा इस वाक्य में जो कुछ हुआ था उसे और अपने पिता की भावना को दोहरा रहा है। वास्तव में पिता को धोखा दिया गया है और यूसुफ उसे अभी देख सकता है। अब वह इस बात को जानता है कि कई वर्ष पूर्व उसके भाइयों ने उसके पिता से क्या कहा था। मैं विश्वास करता हूं कि यह पहली बार है कि किसी ने इतनी लंबी बात उसके सामने कही है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वह नहीं है, अर्थात वह मर चुका है। मित्रों, हम और कुछ देख सकते हैं कि याकूब अनुग्रह में बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक वह नहीं पहुंचा है। परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय वह इस लड़के विन्यामिन का सहारा ले रहा है। यदि विन्यामिन को कुछ हो गया तो वह दुख उसे मार डालेगा और वह शोक के साथ अधोलोक में उतरेगा। मित्रों, आज भी कुछ मसीही हैं, वे जो परमेश्वर में बड़े अद्भुत विश्वास को प्रकट करते हैं जब उनके प्रियजन की मृत्यु निकट आती है। तब वास्तव में वह मर चुका होता है जब तक कि यह विश्वास उसका बढ़ता है। मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि आप अपने परिवार या परिजनों के सदस्य या मित्र के साथ कितना प्रेम करते हैं। यदि आप वास्तव में परमेश्वर के पुत्र या संतान है तो आपको मालूम होगा कि एक दिन आप एक दूसरे को देखेंगे। जो विश्वास से चलता है वह ऐसे समाचार से विहोश होकर नहीं गिरता। इसलिए हम समझ सकते हैं कि याकूब अभी तक नहीं पहुंच पाया है। यद्यपि वह अनुग्रह में बढ़ रहा है लेकिन अभी तक उसे परमेश्वर का पूर्ण भरोसा नहीं है। हम उत्पत्ति की पुस्तक 44 अध्याय उसके 30 और 31 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, इसलिए अब यदि मैं तेरे दास अपने पिता के पास पहुंचूं और यह लड़का साथ न रहे, उसका प्राण तो इस लड़के के प्राण से बंधा है, तो यह देखकर कि यह लड़का हमारे साथ नहीं है वह मर जाएगा। इस प्रकार तेरे दास अपने पिता को जो कि पके बालों की अवस्था का है शोक के साथ अधोलोक में उतरेंगे। मित्रों, आप यहाँ पर यहूदा की चिंता को देख रहे हैं जो वह अपने बूढ़े पिता याकूब के लिए दिखा रहा है। यहूदा अपने भाइयों की तरफ से प्रवक्ता है। मैं सोचता हूँ कि अन्य भाइयों में से कोई भी भाई इस बात को कह सकता था जो उसने कहा। अब हम उत्पत्ति 44 अध्याय उसके 32 से 34 पद को पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तेरा दास अपने पिता से यह कहकर जमानत दे चुका है, यदि मैं इसे वापस ना ले आऊं तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। इसलिए कृपा कर अब तेरा यह सेवक इस लड़के के बदले तेरा दास होने पाए और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए। फिर यदि लड़का मेरे साथ ना हो तो मैं क्यों कर अपने पिता के पास जा सकूंगा? कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वह दुख देखना पड़े जो मेरे पिता पर आ पड़ेगा। मित्रों, फिर से हम यहूदा को उस दल के प्रवक्ता के रूप में देखते हैं और उनमें से कोई भी अपने आप को दास होने के लिए दे सकता था। यूसुफ अपने भाइयों की परीक्षा लेता है और वे सब उसमें पास हो जाते हैं। विन्यामिन को दास होने के लिए जाने देने के बजाय वे सभी उसका स्थान या उसके बदले में दास होने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, हम बाद में इतिहास में देखते हैं कि यहूदा के वंश से एक आया जो यहूदा के वंश से था, जिसने सारे अपराधियों के अर्थात सारे दोषों को अपने ऊपर में ले लिया और कीमत चुका दी। हम रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय और 8 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। मित्रों, मसीह ने अपराधी के स्थान को ले लिया। यहां पर यह अध्याय 44 समाप्त होता है, लेकिन हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए उत्पत्ति के 45 अध्याय से अध्ययन को जारी रखेंगे। मित्रों, पिछले अध्याय का कहानी इस अध्याय से भी लगातार हमारे सामने है। यूसुफ अपने आप को अपने भाइयों के सामने प्रकट करता है और उनके साथ अपनी पहचान देता है। यूसुफ अपने पहचान को प्रकट करता है। हम उत्पत्ति की पुस्तक 45 अध्याय उसके 1 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, यूसुफ उन सब लोगों के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने आप को रोक ना सका। तब उसने चिल्लाकर कहा, मेरे पास से सब लोगों को बाहर कर दो। इसलिए जब यूसुफ ने स्वयं को अपने भाइयों पर प्रकट किया तब उसके साथ कोई ना था। मित्रों, यूसुफ कमरे को खाली करवा देता है जो वहां उपस्थित थे। तब हम उत्पत्ति 45 अध्याय और उसके 2 पद में आगे पढ़ते हैं, तब लिखा है, तब वह इतनी जोश से चिल्ला चिल्ला कर रोया कि मिस्रियों ने इसे सुना और फिरौन के घर के लोगों ने भी इसके बारे में सुना। मित्रों, इस समय यूसुफ अपने कमरे से बाहर नहीं जा सका, बस वह टूट गया और उसने रोना आरंभ कर दिया। यूसुफ को छोड़ और कोई नहीं जानता था कि वह क्यों रो रहा है। यहां तक कि उसके अपने भाई भी नहीं जानते थे कि वहां पर जो दास या नौकर थे वे भी नहीं जानते थे। अब यूसुफ के सामने और कोई अगला कारण नहीं है कि वह अपनी पहचान को उनसे छिपाए, क्योंकि वह अपने भाइयों की पूरी तरह से परीक्षा ले चुका है। मित्रों, मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि वो दिन आ रहा है जब यीशु मसीह अपने आप को अपने लोगों के बीच में प्रकट करेंगे, अर्थात यहूदियों के सामने। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय और उसकी 11 पद में लिखा है, वह अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, बल्कि उसे क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया। परंतु जब वह दोबारा आएगा तब वह अपने आप को अपने लोगों पर प्रकट करेगा और बताएगा कि वह कौन है। जकर्याह की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब कोई उससे पूछेगा, तेरी बाहों के बीच में ये घाव कैसे हैं? वह उत्तर देगा, ये घाव मेरे मित्रों के घर में मुझे लगे थे। मसीह अपने आप को अपने लोगों पर प्रकट करेगा या पहचान बतलाएगा। जकर्याह की पुस्तक 13 अध्याय उसके 1 पद में भी लिखा है, उस दिन दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए अपने पाप और अपनी मलिनता धोने का एक सोता बहाया जाएगा, यह प्रभु यीशु और उसके लोगों के बीच में पारिवारिक बात होगी। यूसुफ का अपने भाइयों के सामने स्वयं को प्रकट करना एक संकेत या आभास देता है कि यीशु मसीह का स्वयं को अपने लोगों के सामने प्रकट करना या प्रगटीकरण का दिन कितना अद्भुत होगा। मित्रों, यूसुफ भावना में इतना भर गया कि वह अपने आप को रोक न सका। फिरौन के घर में भी उसका रोना सुनाई दिया। वे नहीं समझ सकते थे कि वहां यूसुफ के घर में क्या हो रहा है। हम उत्पत्ति की पुस्तक 45 अध्याय उसके 3 पद पढ़ते हैं। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरे पिता अब तक जीवित हैं? परंतु उसके भाई उसे उत्तर ना दे सके, क्योंकि वे उसकी उपस्थिति से घबरा गए थे। हमारे अनुवाद में घबरा गए थे का प्रयोग हुआ है, जो उतना प्रभावी शब्द नहीं है। उसके भाई उसके सामने भयभीत हो गए थे। मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप सोचते हैं कि उसके सामने घबरा गए थे, तो वे अब वास्तव में भयभीत हो गए थे। करीब 25 वर्ष हो गए हैं जब से उन्होंने उसे इस्माइलियों के हाथ में बेचा था, और अब उन्हें पूरा भरोसा था कि वह उनसे बदला लेगा। इसलिए वे उससे बात करने के लिए भी बहुत भयभीत हो रहे थे और डरे हुए थे। हम उत्पत्ति की पुस्तक 45 अध्याय के 4 पद में आगे पढ़ते हैं। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। वे उसके निकट पहुंचे। तब उसने उनसे कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ में बेच दिया था। मित्रों, वह कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं। यहां एक नाटकीय क्षण है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कैसा महसूस कर रहे थे? यूसुफ की प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए। वह क्रोधित नहीं है और वह बदला लेना भी नहीं चाहता है। यही एक साधारण मनुष्य की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो प्रश्न है कि वह बदला लेना क्यों नहीं चाहता है? आइए हम उत्पत्ति 45 अध्याय के 5 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा है, अव्याकुल या अपने आप से क्रोधित मत हो कि तुमने मुझे यहां आने वालों के हाथ बेच दिया, क्योंकि परमेश्वर ने प्राणों की रक्षा के लिए तुमसे पहले मुझे यहां भेजा था। मित्रों, आप देखें कि यूसुफ इन सब बातों में जो कुछ देख सका वह यह था कि परमेश्वर ने इसे एक उद्देश्य के लिए होने दिया। परमेश्वर उसके जीवन में कार्य कर रहा था। तब हम उत्पत्ति की पुस्तक 45 अध्याय उसके 6-8 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, क्योंकि 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और 5 वर्ष तक ऐसा ही रहेगा, जिसमें ना तो हल चलेगा और ना फसल काटी जाएगी। परमेश्वर ने मुझे तुमसे पहले भेजा कि पृथ्वी पर तुम्हारे वंश की रक्षा की जाए और महान छुटकारा देकर तुम्हें जीवित रखे। इसलिए अब मुझको यहां भेजने वाले तुम नहीं परंतु परमेश्वर है, और उसी ने मुझे फिरौन के लिए पिता के समान और उसके घर का स्वामी तथा सारे मिस्र देश का शासक ठहरा दिया है। मित्रों, यदि मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा या हाथ को देख सकें, तो क्या हम क्रोधित होकर उससे बदला लेंगे? मैं नहीं समझता कि हम ऐसा करेंगे। पुनः यह व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करता है, अर्थात उसको महिमा देता है। यूसुफ को जब मिस्र देश में लाया गया था, उस समय वह 17 वर्ष का था, और जब वह फिरौन के सामने खड़ा हुआ, उस समय वह 30 वर्ष का था, और यह 7 साल की प्रचुरता है, और अब 2 वर्ष के अकाल के समय बीत चुके हैं। इसलिए अब यूसुफ 39 वर्ष का हो गया है और मिस्र में 22 वर्षों से रह रहा है। इन सब बातों में वह परमेश्वर की हाथ को देखता है। आगे हम देखते हैं कि यूसुफ अपने परिवार को मिस्र देश में बुलाता है। हम उत्पत्ति 45 अध्याय उसके 9-11 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, शीघ्र उठकर मेरे पिता के पास जाओ और उससे कहो, तेरा पुत्र यूसुफ यह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र पर स्वामी ठहरा दिया है, शीघ्र उठकर मेरे पास चला आ। तू अपने बेटों, नाती पोतों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत गोशेन देश में मेरे निकट रहेगा, और मैं तुझे आवश्यकता की सब वस्तुएं दूंगा, क्योंकि अकाल के 5 वर्ष अब भी शेष हैं। ऐसा ना हो कि कहीं तू और तेरा घराना, वरन जितने तेरे हैं, सब भूखे मरे। मित्रों, यदि याकूब और उसका पूरा परिवार अकाल खत्म होने तक ठहरा रहता, तो वे नहीं बच पाते और नाश हो गए होते। इसलिए यूसुफ उन्हें गोशेन में लाना चाहता है, जो मिस्र देश के सबसे अच्छी भूमि या क्षेत्र में से है। यह वही देश है जहां पर परमेश्वर उन्हें जाति बनाने जा रहे हैं। दुनिया की अन्य जगहों को छोड़ वे यहां बसे। भाइयों के जीवन ने इस बात को प्रकट कर दिया कि उन्हें कनान देश से बाहर निकालने की आवश्यकता है। तब हम उत्पत्ति की पुस्तक 45 अध्याय के 12 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और तुम्हारी आंखें देखती है और मेरा भाई विन्यामिन भी अपनी आंखों से देखता है कि मैं ही तुमसे बातें कर रहा हूं। मैं सोचता हूँ कि वे सब चुपचाप उसके सामने खड़े थे और उनकी गर्दन झुके हुए थे और वे यूसुफ की बातों को सुनकर कुछ कहने के लायक नहीं थे, जो एक तरह से अविश्वसनीय लग रहा था यदि यूसुफ उनके सामने नहीं होता तब, परंतु वह उनके सामने खड़ा था। हम उत्पत्ति की पुस्तक के 45 अध्याय और उसके 13 और 14 पद में पढ़ते हैं, तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है और वह सब जो तुमने देखा है मेरे पिता से वर्णन करना और तुरंत यहां ले आना। तब वह विन्यामिन के गले से लिपट कर रोया और विन्यामिन भी उसके गले से लिपट कर रोया। यहां पर दो भाइयों के बीच मिलन का एक कोमल दृश्य है। यूसुफ और विन्यामिन दोनों ही बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं। हम उत्पत्ति की पुस्तक के 45 अध्याय के 15 पद में इस तरह से पढ़ते हैं, फिर वह अपने भाइयों को चूम कर रोया, तब उसके भाई उससे बातें करने लगे। मित्रों, उसके अन्य भाई उनके मिलन को देखकर बहुत चक्के हो गए थे, परंतु अब वे ठीक हो गए और उससे बातें करना आरंभ किया और इसके बाद इस सब बातों की सूचना देश में फैलने लगी। हम उत्पत्ति 45 अध्याय उसके 16 पद में पढ़ते हैं, जब इस बात का समाचार फिरौन के भवन तक पहुंचा कि यूसुफ के भाई आए हैं, तो इससे फिरौन और उसके कर्मचारी आनंदित हुए। मित्रों, यूसुफ के घर में ये सब बातों की आवाज आ रही थी जिसे लोग सुन सकते थे। फिरौन जानना चाहते थे कि वहां पर क्या हो रहा है और सोचता हूं कि उसने यूसुफ के घर के एक नौकर से पूछा होगा कि वहां पर क्या हो रहा है और उस नौकर ने संभवतः इस प्रकार कहा होगा, आपको मालूम है कि वे 11 व्यक्ति जो कनान से आए हैं वे यूसुफ के भाई हैं। इस बात से फिरौन को आनंद हुआ, पर प्रश्न यह है कि इस बात से फिरौन क्यों खुश हुआ। आपको याद होगा कि वह हिक्सोस जाति का राजा था जो यूसुफ और उसके परिवार के लोगों की तरह वह मिस्रियों पर इतना भरोसा नहीं कर सकता था, पर वह यूसुफ के विश्वास योग्यता से प्रसन्न था, इसलिए वह आनंदित हुआ कि उसी के जैसे और लोग भी होने जा रहे हैं। मित्रों, यहां पर हमारा समय समाप्त होता है, इसलिए आज हम अपने अध्ययन को यहीं पर समाप्त करते हैं और पुनः अगले अध्ययन में हम इसके आगे के विषयों को देखेंगे। प्रभु आप सबको अपने आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।